प्रकरण 3 काव्यखंड संवत 1950 से 1975 सामान्य नई धारा द्वितीय उत्थान। पंडित श्रीधर पाठक के एकांतवासी योगी का उल्लेख खड़ी बोली की कविता के आरंभ के प्रसंग में प्रथम उत्थान के अंतर्गत हो चुका है। उसकी सीधी सादी खड़ी बोली और जनता के बीच प्रचलित लय ही ध्यान देने योग्य नहीं है, किंतु उसकी कथा की सार्वभौम मार्मिकता भी ध्यान देने योग्य है। किसी के प्रेम में योगी होना और प्रकृति के निर्जन क्षेत्र में कुटी छाकर रहना एक ऐसी भावना है जो समान रूप में सब देशों के और सब श्रेणियों के स्त्री पुरुषों के मर्म का स्पर्श स्वभावतः करती आ रही है। सीधी सादी खड़ी बोली में अनुवाद करने के लिए ऐसी प्रेम कहानी चुनना जिसकी मार्मिकता अपर स्त्रियों तक के गीतों की मार्मिकता के मेल में हो, पंडितों की बंधी हुई रूढ़ी से बाहर निकलकर अनुभूति के स्वतंत्र क्षेत्र में आने की प्रवृत्ति का द्योतक है। भारतीय हृदय का सामान्य स्वरूप पहचानने के लिए पुराने प्रचलित ग्राम गीतों की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल पंडितों द्वारा प्रवर्तित काव्य परंपरा का अनुशीलन ही अलम नहीं है। पंडितों की बंधी प्रणाली पर चलने वाली काव्यधारा के साथ साध सामान्य अपर जनता के बीच एक स्वच्छंद और प्राकृतिक भावधारा भी गीतों के रूप में चलती रहती है। ठीक उसी प्रकार जैसे बहुत काल से स्थिर चली आती हुई पंडितों की साहित्य भाषा के साथ साथ लोक भाषा की स्वाभाविक धारा भी बराबर चलती रहती है। जब पंडितों की काव्य भाषा स्थिर होकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ती हुई लोक भाषा से दूर पड़ जाती है और जनता के हृदय पर प्रभाव डालने की उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है, तब शिष्ट समुदाय लोक भाषा का सहारा लेकर अपनी काव्य परंपरा में नया जीवन डालता है। प्राकृत के पुराने रूपों से लदी अपभ्रंश जब लद्दड़ होने लगी, तब शिष्ट काव्य प्रचलित देशी भाषाओं से शक्ति प्राप्त करके ही आगे बढ़ सका। यही प्राकृतिक नियम काव्य के स्वरूप के संबंध में भी अटल समझना चाहिए। जब जब शिष्टों का काव्य पंडितों द्वारा बंद कर निश्चेष्ट और संकुचित होगा, तब तब उसे सजीव और चेतन प्रसार देश की सामान्य जनता के बीच स्वच्छंद बहती हुई प्राकृतिक भावधारा से जीवन तत्व ग्रहण करने से ही प्राप्त होगा। यह भावधारा अपने साथ हमारे चिर परिचित पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, जंगल मैदानों आदि को भी समेटे चलती है। देश के स्वरूप के साथ यह संबद्ध चलती है। एक गीत में कोई ग्राम वधु अपने वियोग काल की दीर्घता की व्यंजना अपने चिर परिचित प्रकृति व्यापार द्वारा इस भोले ढंग से करती है। जो नीम का प्यारा पौधा प्रिय अपने हाथ से द्वार पर लगा गया, वह बड़ा होकर फूला और उसके फूल झड़ भी गए, पर प्रिय न आया। इस भावधारा की अभिव्यंजन प्रणालियां वे ही होती हैं जिन पर जनता का हृदय इस जीवन में अपने भाव स्वभावतः ढालता आता है। हमारी भाव प्रवर्तिनी शक्ति का असली भंडार इसी स्वाभाविक भावधारा के भीतर निहित समझना चाहिए। जब पंडितों की काव्यधारा इस स्वाभाविक भावधारा से विच्छिन्न पड़कर रूढ़ हो जाती है, तब वह कृत्रिम होने लगती है और उसकी शक्ति भी क्षीण होने लगती है। ऐसी परिस्थिति में इसी भावधारा की ओर दृष्टि ले जाने की आवश्यकता होती है। दृष्टि ले जाने का अभिप्राय है उस स्वाभाविक भावधारा के ढलाव की नाना अंतर भूमियों को परख कर शिष्ट काव्य के स्वरूप का पुनर्विधान करना। यह पुनर्विधान सामंजस्य के रूप में हो, अंध प्रतिक्रिया रूप में नहीं, जो विपरीतता की हद तक जा पहुंचती है। इस प्रकार के परिवर्तन को ही अनुभूति की सच्ची नैसर्गिक स्वच्छंदता, ट्रू रोमांटिसिज्म कहना चाहिए, क्योंकि वह मूल प्राकृतिक आधार पर होता है। इंग्लैंड के जिस स्वच्छंदतावाद रोमांटिसिज्म का इधर हिंदी में भी बराबर नाम लिया जाने लगा है, उसके प्रारंभिक उत्थान के भीतर परिवर्तन के मूल प्राकृतिक आधार का स्पष्ट आभास रहा। पीछे के पृष्ठ संख्या 327 कवियों की व्यक्तिगत, विद्यागत और बुद्धिगत प्रवृत्तियों और विशेषताओं के, जैसे रहस्यात्मकता, दार्शनिकता, स्वतंत्र भावना, कलाकार आदि के अधिक प्रदर्शन से वह कुछ ढक सा गया। काव्य को पांडित्य की विदेशी रूढ़ियों से मुक्त और स्वच्छंद काउपर ने किया था, पर स्वच्छंद होकर जनता के हृदय में संचरण करने की शक्ति वह कहां से प्राप्त करे, यह स्कॉटलैंड के किसानी झोपड़े में रहने वाले कवि बर्न्स ने ही दिखाया था। उसने अपने देश के परंपरागत प्रचलित गीतों की मार्मिकता परखकर देश भाषा में रचनाएं की जिन्होंने वहां के सारे जन समाज के हृदय में अपना घर किया। वॉल्टर स्कॉट ने देश की अंतरव्यापिनी भावधारा से शक्ति लेकर साहित्य को अनुप्राणित किया था। जिस परिस्थिति में अंग्रेजी साहित्य में स्वच्छंदतावाद का विकास हुआ, उसे भी देखकर यह समझ लेना चाहिए कि रीति काल के अंत में या भारतेंदु काल के अंत में हिंदी काव्य की जो परिस्थिति थी वह कहाँ तक इंग्लैंड की परिस्थिति के अनुरूप थी। सारे यूरोप में बहुत दिनों तक पंडितों और विद्वानों के लिखने पढ़ने की भाषा लैटिन प्राचीन रोमियों की भाषा रही। फ्रांसीसियों के प्रभाव से इंग्लैंड की काव्य रचना भी लैटिन की प्राचीन रूढ़ियों से जकड़ी जाने लगी। उस भाषा के काव्यों की सारी पद्धतियों का अनुसरण होने लगा। बंधी हुई अलंकृत पदावली, वस्तु वर्णन की रूढ़ियां, छंदों की व्यवस्था सब ज्यों की त्यों रखी जाने लगी। इस प्रकार अंग्रेजी काव्य विदेशी काव्य और साहित्य की रूढ़ियों से इतना आच्छन्न हो गया कि वह देश की परंपरागत स्वाभाविक भावधारा से विच्छिन्न सा हो गया। काउपर, क्रेव और बर्न्स ने काव्यधारा को साधारण जनता की नाद रुचि के अनुकूल नाना मधुर लयों में तथा लोक हृदय के ढलाव की नाना मार्मिक अंतर्भूमियों में ढाला। अंग्रेजी साहित्य के भीतर काव्य का यह स्वच्छंद रूप पूर्व रूप से पूर्ण अलग दिखाई पड़ा। बात यह थी कि लैटिन, जिसके साहित्य का निर्माण बहुत कुछ यूनानी ढांचे पर हुआ था, इंग्लैंड के लिए दूर देश की भाषा थी, अतः उसका साहित्य भी वहाँ के निवासियों ने अपने चिर संचित संस्कार और भाव व्यंजन पद्धति से दूर पड़ता था। पर हमारे साहित्य में रीति काल की जो रूढ़ियाँ हैं वे किसी और देश की नहीं, उनका विकास इसी देश के साहित्य के भीतर संस्कृत में हुआ है। संस्कृत काव्य और उसी के अनुकरण पर रचित प्राकृत अपभ्रंश काव्य भी हमारा ही पुराना काव्य है, पर पंडितों और विद्वानों द्वारा रूप ग्रहण करते रहने और कुछ बंध जाने के कारण जनसाधारण की भावमयी वाग्धारा से कुछ हटा सा लगता है। पर एक ही जाति के बीच आविर्भूत होने के कारण दोनों में कोई मौलिक पार्थक्य नहीं, अतः हमारे वर्तमान काव्य क्षेत्र में यदि अनुभूति की स्वच्छंदता की धारा प्रकृत पद्धति पर अर्थात परंपरा से चले आते हुए मौखिक गीतों के मर्मस्थल से शक्ति लेकर चलने पाती तो वह अपनी ही काव्य परंपरा होती, अधिक सजीव और स्वच्छंद की हुई। रीति काल के भीतर हम दिखा चुके हैं कि किस प्रकार रसों और अलंकारों के उदाहरणों के रूप में रचना होने से और कुछ छंदों की परिपाटी बंध जाने से हिंदी कविता जकड़ सी उठी थी। हरिश्चंद्र के सहयोगियों में काव्यधारा को नए नए विषयों की ओर मोड़ने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी, पर भाषा ब्रज ही रहने दी गई और पद्य के ढांचों, अभिव्यंजना के ढंग तथा प्रकृति के स्वरूप निरीक्षण आदि में स्वच्छंदता के दर्शन न हुए। इस प्रकार की स्वच्छंदता का आभास पहले पहल पंडित श्रीधर पाठक ने ही दिया। उन्होंने प्रकृति के रूढ़िबद्ध रूपों तक ही न रहकर अपनी आंखों से भी उसके रूपों को देखा। गुणवंत हेमंत में वे गांव में उपजने वाली मूली, मटर ऐसी वस्तुओं को भी प्रेम से सामने लाए जो परंपरागत ऋतु वर्णनों के भीतर नहीं दिखाई पड़ती थी। इसके लिए उन्हें पंडित माधव प्रसाद मिश्र की बौछार भी सहनी पड़ी थी। उन्होंने खड़ी बोली पद्य के लिए सुंदर लय और उतार चढ़ाव के कई नए ढांचे भी निकाले और इस बात का ध्यान रखा कि छंदों का सुंदर लय से पढ़ना एक बात है, राग रागिनी गाना दूसरी बात। ख्याल या लावणी की लय पर जैसे एकांतवासी योगी लिखा गया, वैसे ही सूत्रे साइयों के सदुकड़ी ढंग पर जगत सच्चाई सार, जिसमें कहा गया कि जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, स्वर्गीय वीणा में उन्होंने उस परोक्ष दिव्य संगीत की ओर रहस्यपूर्ण संकेत किया जिसके ताल सुर पर यह सारा विश्व नाच रहा है। पृष्ठ संख्या 328। इन सब बातों का विचार करने पर पंडित श्रीधर पाठक ही सच्चे स्वच्छंदतावाद रोमांटिसिज्म के प्रवर्तक ठहरते हैं। खेद है कि सच्ची और स्वाभाविक स्वच्छंदता का यह मार्ग हमारे काव्य क्षेत्र के बीच चल न पाया। बात यह है कि उस समय पिछले संस्कृत काव्य के संस्कारों के साथ पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए, जिनका प्रभाव गद्य साहित्य और काव्य निर्माण दोनों पर बहुत व्यापक पड़ा। हिंदी में परंपरा से व्यवहित छंदों के स्थान पर संस्कृत के वित्तों का चलन हुआ, जिसके कारण संस्कृत पदावली का समावेश बढ़ने लगा। भक्ति काल और रीति काल की परिपाटी के स्थान पर पिछले संस्कृत साहित्य की पद्धति की ओर लोगों का ध्यान बटा। द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका द्वारा बराबर कविता में बोल चाल की सीधी सादी भाषा का आग्रह करते रहे, जिससे इतिवृत्तात्मक मैटर ऑफ फैक्ट पद्यों का खड़ी बोली में ढेर लगने लगा। यह तो हुई द्वितीय उत्थान के भीतर की बात। आगे चलकर तृतीय उत्थान में उक्त परिस्थिति के कारण जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई वह भी स्वाभाविक स्वच्छंदता की ओर न बढ़ने पाई। बीच में रविंद्र बाबू की गीतांजलि की धूम उठ जाने के कारण नवीनता प्रदर्शन के इच्छुक नए कवियों में से कुछ लोग तो बंग भाषा की रहस्यात्मक कविताओं की रूपरेखा लाने में लगे, कुछ लोग पाश्चात्य काव्य पद्धति को विश्व साहित्य का लक्षण समझ उसके अनुसरण में तत्पर हुए। परिणाम यह हुआ कि अपने यहाँ के रीति काल की रूढ़ियों और द्वितीय उत्थान की इतिवृत्तात्मकता से छूटकर बहुत सी हिंदी कविता विदेश की अनुकृत रूढ़ियों और वादों में जा फंसी। इन्हें गिने नए कवि भी स्वच्छंदता के मार्मिक और स्वाभाविक पथ पर चले। एक, पंडित श्रीधर पाठक। एकांतवासी योगी के बहुत दिनों पीछे पंडित श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली में और भी रचनाएं की। खड़ी बोली की इनकी दूसरी पुस्तक शांत प्रतीक गोल्ड स्मिथ के ट्रेवलर का अनुवाद निकली। इनके अतिरिक्त खड़ी बोली में फुटकल कविताएं भी पाठक जी ने बहुत सी लिखी। मन की मौज के अनुसार कभी कभी ये एक ही विषय के वर्णन में दोनों बोलियों के पद रख देते थे। खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों में ये बराबर कविता करते रहे। उजड़ ग्राम, डेजर्टेड विलेज इन्होंने ब्रज भाषा में ही लिखा। अंग्रेजी और संस्कृत दोनों के काव्य साहित्य का अच्छा परिचय रखने के कारण हिंदी कवियों में पाठक जी की रुचि बहुत ही परिष्कृत थी। शब्द शोधन में तो पाठक जी अद्वितीय थे। जैसी चलती और रसीली इनकी ब्रज भाषा होती थी, वैसा ही कोमल और मधुर संस्कृत पद विन्यास भी। ये वास्तव में एक बड़े प्रतिभाशाली, भावुक और सुरुचि संपन्न कवि थे। वद्दापन इनमें न था, न रूप रंग में, न भाषा में, न भाव में, न चाल में, न भाषण में। इनकी प्रतिभा बराबर रचना के नए मार्ग भी निकाला करती थी। छंद, पद विन्यास, वाक्य विन्यास आदि के संबंध में नई नई बंदिशें इन्हें खूब सूझा करती थीं। अपनी रुचि के अनुसार कई नए ढांचे के छंद इन्होंने निकाले जो पढ़ने में बहुत ही मधुर लय पर चलते थे। यह छंद देखिए। नाना कृपान निज पानी लिए, वपुनील वसन परिधान किए, गंभीर घोर अभिमान हिए, छकिपारी जात मधुपान किए, छिन छिन पर जोर मरोर दिखावत, पल पल पर आकृति कोर झुकावत, यह मोर नचावत सोर मचावत, श्वेत श्वेत बगपाति उड़ावत, नंदन प्रसून मकरंद बिंदु मिश्रित, समीर बिनु धीर चलावत। अंत्यानुप्रास रहित बेठिकाने समाप्त होने वाले गद्य कैसे लंबे वाक्यों के छंद भी जैसे अंग्रेजी में होते हैं इन्होंने लिखे हैं। सांध्य अटन का यह छंद देखिए। बिजन बन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था, प्रसव के काल की लालिमा में लसा, बाल शशि व्योम की ओर था आ रहा, सद्य उत्फुल्ल अरविंद नभ नील सुवी, शाल नभ वक्ष पर जा रहा था चढ़ा। पृष्ठ संख्या 329। विश्व संचालक परोक्ष संगीत ध्वनि की ओर रहस्यपूर्ण संकेत स्वर्गीय वीणा की इन पंक्तियों में देखिए। कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला सुमंजु वीणा बजा रही है, सुरों के संगीत की सी कैसी सुरीली गुंजार आ रही है, कोई पुरंदर की किंकरी है कि या किसी सुर की सुंदरी है, वियोग तप्ता सी भोग मुक्ता हृदय के उद्गार गा रही है, कभी नई तान प्रेममय है, कभी प्रकोपन, कभी विनय है, दया है, दाक्षिण्य का उदय है, अनेकों बानक बना रही है, भरे गगन में हैं जितने तारे, हुए हैं बदमस्त गत पै सारे, समस्त ब्रह्मांड भर को मानो दो उंगलियों पर नचा रही है। यह कह आए हैं कि खड़ी बोली की पहली पुस्तक एकांतवासी योगी इन्होंने लावणी या ख्याल के ढंग पर लिखी थी। पीछे खड़ी बोली को हिंदी के प्रचलित छंदों में ले आए। शांत पथिक की रचना इन्होंने रोला छंद में की। इसके आगे भी ये बढ़े और यह दिखा दिया कि सवैये में भी खड़ी बोली कैसी मधुरता के साथ ढल सकती है। इस भारत में वन पावन तू ही तपस्वियों का तप आश्रय था, जगत तत्व की खोज में लग्न जहां ऋषियों ने अभग्न किया श्रम था, तब प्राकृत विश्व का विभ्रम और था, सात्विक जीवन का क्रम था, महिमा वनवास की थी तब और प्रभाव पवित्र अनुपम था। पाठक जी कविता के लिए हर एक विषय ले लेते थे। समाज सुधार के वे बड़े आकांक्षी थे। इससे विधवाओं की वेदना, शिक्षा प्रचार, ऐसे ऐसे विषय भी उनकी कलम के नीचे आया करते थे। विषयों को काव्य का पूरा पूरा स्वरूप देने में चाहे वे सफल न हुए हों, अभिव्यंजना के वाग वचित्र की ओर उनका ध्यान चाहे न रहा हो, गंभीर नूतन विचारधारा चाहे उनकी कविताओं के भीतर कम मिलती हो, पर उनकी वाणी में कुछ ऐसा प्रसाद था कि जो बात उसके द्वारा प्रकट की जाती थी उसमें सरसता आ जाती थी। अपने समय के कवियों में प्रकृति का वर्णन पाठक जी ने सबसे अधिक किया। इससे हिंदी प्रेमियों में वे प्रकृति के उपासक कहे जाते थे। पर यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि उनकी यह उपासना प्रकृति के उन्हीं रूपों तक परिमित थी जो मनुष्य को सुखदायक और आनंदप्रद होते हैं या जो भव्य और सुंदर होते हैं। प्रकृति के सीधे साधे नित्य आँखों के सामने आने वाले देश के परंपरागत जीवन से संबंध रखने वाले दृश्यों की मधुरता की ओर उनकी दृष्टि कम रहती। पंडित श्रीधर पाठक का जन्म संवत 1916 में और मृत्यु संवत 1985 में हुई। दो, पंडित अयोध्या सिंह जी उपाध्याय हरिऔध। भारतेंदु के पीछे और द्वितीय उत्थान के पहले ही हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठ कवि पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध नए विषयों की ओर चल पड़े थे। खड़ी बोली के लिए उन्होंने पहले उर्दू के छंदों और ठेठ बोली को ही उपयुक्त समझा, क्योंकि उर्दू के छंदों में खड़ी बोली अच्छी तरह मज चुकी थी। संवत 1957 के पहले ही वे बहुत सी फुटकल रचनाएं इस उर्दू ढंग पर कर चुके थे। नागरी प्रचारणी सभा के गृह प्रवेशोत्सव के समय संवत 1957 में उन्होंने जो कविता पढ़ी थी उसके ये चरण मुझे अब तक याद हैं। चार डग हमने भरे तो क्या क्या किया है, पड़ा मैदान कोसों का अभी। मौलवी ऐसा न होगा एक भी, खूब उर्दू जो न होवे जानता। इसके उपरांत तो वे बराबर इसी ढंग की कविता करते रहे। जब पंडित महावीर प्रसाद जी द्विवेदी के प्रभाव से खड़ी बोली ने संस्कृत छंदों और संस्कृत की समस्त पदावली का सहारा लिया, तब उपाध्याय जी जो गद्य में अपनी भाषा संबंधी पटुता उसे दो हदों पर पहुंचाकर दिखा चुके थे, उस शैली की ओर भी बढ़े और संवत 1971 में उन्होंने अपना प्रिय प्रवास नामक एक बहुत बड़ा काव्य प्रकाशित किया। पृष्ठ संख्या 330। नव शिक्षितों के संसर्ग से उपाध्याय जी ने लोक संग्रह का भाव अधिक ग्रहण किया है। उक्त काव्य में श्री कृष्ण ब्रज के रक्षक नेता के रूप में अंकित किए गए हैं। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। उपाध्याय जी का संस्कृत पदविन्यास अनेक उपसर्गों से लदा तथा मंजूल पेशल आदि से बीच बीच में जटित अर्थात चुना हुआ होता है। द्विवेदी जी और उनके अनुयायी कवि वर्ग की रचनाओं से उपाध्याय जी की रचना इस बात में साफ अलग दिखाई पड़ती है। उपाध्याय जी कोमलकांत पदावली को कविता का सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ समझते हैं। यद्यपि द्विवेदी जी अपने अनुयायियों के सहित जब इस संस्कृत वृत्त के मार्ग पर बहुत दूर तक चल चुके थे तब उपाध्याय जी उस पर आए, पर वे बिल्कुल अपने ढंग पर चले। किसी प्रकार की रचना को हद पर, चाहे उस हद तक जाना अधिकतर लोगों को इष्ट न हो, पहुंचा कर दिखाने की प्रवृत्ति के अनुसार उपाध्याय जी ने अपने इस काव्य में कई जगह संस्कृत शब्दों की ऐसी लंबी लड़ी बांधी है कि हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। पर सर्वत्र यह बात नहीं है। अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चली चलती दिखाई पड़ती है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। कृष्ण के चले जाने पर ब्रज की दशा का वर्णन बहुत अच्छा है। विरह वेदना से शुद्ध वचनावली प्रेम की अनेक अंतर दशाओं की व्यंजना करती हुई बहुत दूर तक चली चलती है। जैसा कि इसके नाम से प्रकट है, इसकी कथा वस्तु एक महाकाव्य क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है। अतः प्रबंध काव्य के सब अवयव इसमें कहाँ आ सकते हैं। किसी के वियोग में कैसी कैसी बातें मन में उठती हैं और क्या क्या कहकर लोग रोते हैं, इसका जहाँ तक विस्तार हो सका है किया गया है। परंपरा पालन के लिए जो दृश्य वर्णन है वे किसी बगीचे में लगे हुए पेड़ पौधों के नाम गिनने के समान हैं। इसी से शायद करील का नाम छूट गया। दो प्रकार के नमूने उद्धृत करके हम आगे बढ़ते हैं। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिकारा केन्दु बिंबानना तनवंगी कलहासिनी सुरसिका क्रीड़ा कला पुत्तली शोभा वारिधि की अमूल्य मणिषी लावण्य लीलामयी श्री राधा मृदुभाषिणी मृगदृगी माधुर्य सन्मूर्ति थी। धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मिनी नाथ डूबे आई दोषा फिर गत हुई दूसरा वार आया यो ही बीती विपुल घटिका और कई वार बीते आया कोई न मधुपुर से और न गोपाल आए। इस काव्य के उपरांत उपाध्याय जी का ध्यान फिर बोलचाल की ओर गया। इस बार उनका मुहावरों पर अधिक जोर रहा। बोलचाल की भाषा में अनेक फुटकल विषयों पर उन्होंने कविताएं रची जिनकी प्रत्येक पंक्ति में कोई न कोई मुहावरा अवश्य खपाया गया। ऐसी कविताओं का संग्रह चोखे चौपदे का एक पद्य दिया जाता है। क्यों पले पीस कर किसी को तू है बहुत पालिसी बुरी तेरी हम रहे चाहते पटाना ही पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। भाषा के दोनों नमूने ऊपर हैं। यही द्विकलात्मक कला उपाध्याय जी की बड़ी विशेषता है। इससे शब्द भंडार पर इनका विस्तृत अधिकार प्रकट होता है। इनका एक और बड़ा काव्य वैदेही वनवास सम्मत 1967 में प्रकाशित हो गया, जिसे ये बहुत पृष्ठ संख्या 331 दिनों से लिखते चले आ रहे थे अब छप रहा है। 3. पंडित महावीर प्रसाद जी द्विवेदी। इस द्वितीय उत्थान के आरंभ काल में हम पंडित महावीर प्रसाद जी द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। गद्य पर जो शुभ प्रभाव द्विवेदी जी का पड़ा, उसका उल्लेख गद्य के प्रकरण में हो चुका है। खड़ी बोली के पद्य विधान पर भी आपका पूरा पूरा असर पड़ा। पहली बात तो यह हुई कि उनके कारण भाषा में बहुत कुछ सफाई आई। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी और बहुत से लोग ब्रज और अवधि आदि का मेल भी कर देते थे। सरस्वती के संपादन काल में उनकी प्रेरणा से बहुत से नए लोग खड़ी बोली में कविता करने लगे। उनकी भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके वे सरस्वती में दे दिया करते थे। इस प्रकार के लगातार संशोधन से धीरे धीरे बहुत से कवियों की भाषा साफ हो गई। उन्हीं नमूनों पर और लोगों ने भी अपना सुधार किया। यह तो ही भाषा के परिष्कार की बात। अब उन्होंने पद्य रचना की जो प्रणाली स्थिर की, उनके संबंध में भी कुछ विचार कर लेना चाहिए। द्विवेदी जी कुछ दिनों तक बंबई की ओर रहे थे, जहां मराठी के साहित्य से उनका परिचय हुआ। उसके साहित्य का प्रभाव उन पर बहुत कुछ पड़ा। मराठी कवितों में अधिकतर संस्कृत के वृत्तों का व्यवहार होता है। पद विन्यास भी प्रायः गद्य का सा रहता है। बंग भाषा की सी कोमल कांत पदावली उसमें नहीं पाई जाती। इसी मराठी के नमूने पर द्विवेदी जी ने हिंदी में पद्य रचना शुरू की। पहले तो उन्होंने ब्रज भाषा का ही आलंबन किया। नागरी प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित नागरी तेरी यह दशा और रघुवंश का कुछ आधार लेकर रचित अयोध्या का विलाप नाम की उनकी कविताएं संस्कृत वृत्तों में पर ब्रज भाषा में ही लिखी गई थी। जैसे श्रीयुक्त नागरी निहारी दशा तिहारी होवे विषाद मन माही अतीव भारी प्राकार जासु नभ मंडल में समाने प्राचीन जासु लखी लोक का पहु सकाने जाकी समस्त सुनी संपत्ति की कहानी नीचे नवाय सिर देवपुरी लजानी। इधर आधुनिक काल में ब्रजभाषा पद्य के लिए संस्कृत वृत्तों का व्यवहार पहले पहल स्वर्गीय पंडित सरयू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य के अपने पद्य बद्ध अनुवाद में किया था, जिसका प्रारंभिक अंश भारतेंदु की कवि वचन सुधा में प्रकाशित हुआ था। पूरा अनुवाद बहुत दिनों पीछे संवत 1968 में पुस्तकाकार छपा। द्विवेदी जी ने आगे चलकर ब्रजभाषा एकदम छोड़ ही दी और खड़ी बोली में ही काव्य रचना करने लगे। मराठी का संस्कार तो था ही, पीछे जान पड़ता है उनके मन में वर्ड्स वर्थ का वह पुराना सिद्धांत भी कुछ जम गया था कि गद्य और पद्य का पदविन्यास एक ही प्रकार का होना चाहिए। पर यह प्रसिद्ध बात है कि वर्ड्स वर्थ का यह सिद्धांत असंगत सिद्ध हुआ था और यह आप ही अपने उत्कृष्ट कविताओं में उसका पालन न कर सका था। द्विवेदी जी ने भी बराबर उक्त सिद्धांत के अनुकूल रचना नहीं की है। अपनी कविताओं के बीच बीच में सानुप्रास कोमल पदावली का व्यवहार उन्होंने किया है। जैसे सुरम्य रूपे रसराशि रंजिते विचित्र वर्णा भरने कहाँ गई अलौकिका नंद विधायनी महा कविंद्र कांते कविते अहो कहाँ मांगल्य मूल में वारिद वारिद वृष्टि। पर उनका जोर बराबर इस बात पर रहता था कि कविता बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। बोलचाल से उनका मतलब ठेठ या हिंदुस्तानी का नहीं रहता था, गद्य की व्यवहारिक भाषा का रहता था। पृष्ठ संख्या 332। परिणाम यह हुआ कि उनकी भाषा बहुत अधिक गद्यवत हो गई। पर जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। भाषा से विचार अलग नहीं रह सकता। उनकी अधिकतर कविताएं इतिवृत्तात्मक हुईं। उनमें वह लाक्षणिकता, वह चित्रमयी भावना और वह वक्रता बहुत कम आ पाई जो रस संचार की गति को तीव्र और मन को आकर्षित करती है। यथा सर्वथा तथैव ऐसे शब्दों के प्रयोग ने उनकी भाषा को और भी अधिक गद्य का स्वरूप दे दिया। यद्यपि उन्होंने संस्कृत वित्तों का व्यवहार अधिक किया है, पर हिंदी के कुछ चलते छंदों में भी उन्होंने बहुत सी कविताएं जैसे विधि विडंबना रची हैं, जिनमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी कम है। अपना कुमार संभव सार उन्होंने इसी ढंग पर लिखा है। कुमार संभव का यह अनुवाद बहुत ही उत्तम हुआ है। इसमें मूल के भाव लाने के प्रयत्न में भाषा में प्रायः जटिलता आ जाया करती है, पर इसमें यह बात जरा भी नहीं है। ऐसा साफ सुथरा दूसरा अनुवाद जो मैंने देखा है, पंडित केशव प्रसाद जी मिश्र का मेघदूत है। द्विवेदी जी की रचनाओं के दो नमूने देकर हम आगे बढ़ते हैं। आरोग्य युक्त बल युक्त सुपुष्ट गात ऐसा जहाँ युवक एक न दृष्टि आता सारी प्रजा निपड़ दीन दुखी जहाँ है कर्तव्य क्या न कुछ भी तुझको वहाँ है। इंद्रासन के इच्छुक किसने करके तप अतिशय भारी की उत्पन्न असूया तुझमें मुझसे कहो कथा सारी मेरा यह अनिवार्य शरासन पांच कुसुम सायक धारी अभी बना लेवे तक्षण ही उसको निज आज्ञाकारी। द्विवेदी जी की कविताओं का संग्रह काव्य मंजूषा नाम की पुस्तक में हुआ है। उनकी कविताओं के दूसरे संग्रह का नाम सुमन है। द्विवेदी जी के प्रभाव और प्रोत्साहन से हिंदी के कई अच्छे अच्छे कवि निकले, जिनमें बाबू मैथिली शरण गुप्त, पंडित रामचरित उपाध्याय और पंडित लोचन प्रसाद पांडे मुख्य हैं। 4. बाबू मैथिली शरण गुप्त। सरस्वती का संपादन द्विवेदी जी के हाथ में आने के प्राय 3 वर्ष पीछे संवत 1963 से बाबू मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली की कविताएं उक्त पत्रिका में निकलने लगीं और उनके संपादन काल तक बराबर निकलती रहीं। संवत 1966 में उनका रंग में भंग नामक एक छोटा सा प्रबंध काव्य प्रकाशित हुआ, जिसकी रचना चित्तौड़ और बूंदी के राजघरानों से संबंध रखने वाली राजपुतानी आन की एक कथा को लेकर हुई थी। तब से गुप्त जी का ध्यान प्रबंध काव्यों की ओर बराबर रहा और वे बीच बीच में छोटे या बड़े प्रबंध काव्य लिखते रहे। गुप्त जी की ओर बराबर रहा और वे बीच बीच में छोटे या बड़े प्रबंध काव्य लिखते रहे। गुप्त जी की ओर पहले पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली उनकी भारत भारती निकली। इसमें मुसद्दस हाली के ढंग पर भारतीयों की या हिंदुओं की भूत और वर्तमान दशाओं की विषमता दिखाई गई है, भविष्य निरूपण का प्रयत्न नहीं है। यद्यपि काव्य की विशिष्ट पदावली, रसात्मक चित्रण, वाक् वैचित्र इत्यादि का विधान इसमें न था, पर बीच में मार्मिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ और सीधी सादी भाषा में होने से यह पुस्तक स्वदेश की ममता से पूर्ण युवकों को बहुत प्रिय हुई। प्रस्तुत विषय को काव्य का पूर्ण स्वरूप न दे सकने पर भी इसने हिंदी कविता के लिए खड़ी बोली की उपयुक्तता अच्छी तरह सिद्ध कर दी। इसी ढंग पर बहुत दिनों पीछे इन्होंने हिंदू लिखा, केशव की कथा, स्वर्ग सहोदर इत्यादि बहुत सी फुटकल रचनाएं इनकी सरस्वती में निकली हैं, जो मंगल घट में संग्रहित हैं। प्रबंध काव्य की परंपरा इन्होंने बराबर जारी रखी। अब तक ये 9-10 छोटे बड़े प्रबंध काव्य लिख चुके हैं, जिनके नाम हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, विकट भट, पलासी का युद्ध, गुरुकुल, किसान, पंचवटी, सिद्धराज, साकेत और यशोधरा। अंतिम 2 बड़े काव्य हैं विकट भट्ट में जोधपुर के एक राजपूत सरदार, पृष्ठ संख्या 333 की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली बात की टेक की अद्भुत पराक्रम पूर्ण कथा है। गुरुकुल में सिख गुरुओं के महत्व का वर्णन है। छोटे काव्यों में जयद्रथ वध और पंचवटी का स्मरण अधिकतर लोगों को है। गुप्त जी के छोटे काव्यों की प्रसंग योजना भी प्रभावशाली है और भाषा भी बहुत साफ सुथरी है। वैतालिक की रचना उस समय हुई जब गुप्त जी की प्रवृत्ति खड़ी बोली में गीत काव्य प्रस्तुत करने की ओर भी हो गई। यद्यपि गुप्त जी जगत और जीवन के व्यक्त क्षेत्र में ही महत्व और सौंदर्य का दर्शन करने वाले तथा अपने राम को लोक के बीच अधिष्ठित देखने वाले कवि हैं, पर तृतीय उत्थान में छायावाद के नाम से रहस्यात्मक कविताओं का कलरव सुन इन्होंने भी कुछ गीत रहस्यवादियों के स्वर में गाए, जो झंकार में संग्रहित हैं। पर असीम के प्रति उत्कंठा और लंबी चौड़ी वेदना का विचित्र प्रदर्शन गुप्त जी की अंतः प्रेरित प्रवृत्ति के अंतर्गत नहीं, काव्य का एक मार्ग चलता देखिए उधर भी जा पड़े। साकेत और यशोधरा इनके 2 बड़े प्रबंध हैं। दोनों में उनके काव्यत्व का तो पूरा विकास दिखाई पड़ता है, पर प्रबंधत्व की कमी है। बात यह है कि इनकी रचना उस समय हुई जब गुप्त जी की प्रवृत्ति गीत काव्य या नए ढंग के प्रगीत मुक्त को लिरिक्स की ओर हो चुकी थी। साकेत की रचना तो मुख्यतः इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। पूरे 2 सर्ग 9 और 10 उसके वियोग वर्णन में खप गए हैं। इस वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कार पूर्ण पद्य तथा आजकल की नई रंगत की वेदना और लाक्षणिक वैचित्र वाले गीत दोनों रखे हैं। काव्य का नाम साकेत रखा गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि इसमें अयोध्या में होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों का वर्णन प्रधान है। राम के अभिषेक की तैयारी से लेकर चित्रकूट में राम भरत मिलन तक की कथा 8 सर्गों तक चलती है। उसके उपरांत 2 सर्गों तक उर्मिला की वियोग व्यवस्था की नाना अंतर्वृत्तियों का विस्तार है, जिसके बीच बीच में अत्यंत उच्च भावों की व्यंजना है। सूरदास की गोपियां वियोग में कहती हैं कि मधुबन तुमकत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के काहे न उकटी परे। पर उर्मिला कहती है रह चिर दिन तू हरी भरी, बड़ सुख से बड़ सृष्टि सुंदरी। प्रेम के शुभ प्रभाव से उर्मिला के हृदय की उदारता का और भी प्रसार हो गया है। वियोग की दशा में प्रिय लक्ष्मण के गौरव की भावना उसे संभाले हुए है। उन्माद की अवस्था में जब लक्ष्मण उसे सामने खड़े जान पड़ते हैं, तब उस भावना को गहरा आघात पहुंचता है और व्याकुल होकर कहने लगती है, प्रभु नहीं फिरे क्या तुम्हें फिरे, हम गिरे अहो तो गिरे गिरे। दंडकारण्य से लेकर लंका तक की घटनाएं शत्रुघ्न के मुंह से मांडवी और भरत के सामने पूरी रसात्मकता के साथ वर्णन कराई गई हैं। रामायण के भिन्न भिन्न पात्रों के परंपरा से प्रतिष्ठित स्वरूपों को विकृत न करके उनके भीतर ही आधुनिक आंदोलनों की भावनाएं, जैसे किसानों और श्रमजीवियों के साथ सहानुभूति, युद्ध प्रथा की मीमांसा, राज व्यवस्था में प्रजा का अधिकार और सत्याग्रह, मनुष्यत्व, कौशल के साथ झलकाई गई हैं। किसी पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र के परंपरा से प्रतिष्ठित स्वरूप को मनमाने ढंग पर विकृत करना हम भारी अनाड़ीपन समझते हैं। यशोधरा की रचना नाटकीय ढंग पर है। उसमें भगवान बुद्ध के चरित्र से संबंध रखने वाले पात्रों के उच्च और सुंदर भावों की व्यंजना और परस्पर कथोपकथन है, जिसमें कहीं कहीं गद्य भी है। भाव व्यंजना प्रायः गीतों में है। द्वापर में यशोधरा, राधा, नारद, कंस, कुब्जा इत्यादि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की मनोवृत्तियों का अलग अलग मार्मिक चित्रण है। नारद और कंस की मनोवृत्तियों के स्वरूप तो बहुत ही विशद और पृष्ठ संख्या 334 समन्वित रूप में सामने रखे गए हैं। गुप्त जी ने अनघ, तिलोत्तमा, चंद्रहास नामक तीन और छोटे छोटे पद्यबद्ध रूपक भी लिखे हैं। अनघ में कवि ने लोक व्यवस्था के संबंध में उठी हुई आधुनिक भावनाओं और विचारों का अवस्थान प्राचीन काल के भीतर ले जाकर किया है। वर्तमान किसान आंदोलन का रंग प्रधान है। गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निस्संदेह कहे जा सकते हैं। भारतेंदु के समय में स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही थी, उसका विकास भारत भारती में मिलता है। इधर के राजनीतिक आंदोलनों ने जो रूप धारण किया, उसका पूरा आभास पिछली रचनाओं में मिलता है। सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यत्ववाद, विश्व प्रेम, किसानों और श्रमजीवियों के प्रति प्रेम और सम्मान, सब की झलक हम पाते हैं। गुप्त जी की रचनाओं के भीतर तीन अवस्थाएं लक्षित होती हैं। प्रथम अवस्था भाषा की सफाई की है, जिसमें खड़ी बोली के पद्यों की मसृणबंध रचना हमारे सामने आती है। सरस्वती में प्रकाशित अधिकांश कविताएं तथा भारत भारती इस अवस्था की रचना के उदाहरण हैं। ये रचनाएं काव्य प्रेमियों को कुछ गद्यवत, रूखी और इतिवृत्तात्मक लगती थीं। इनमें सरस और कोमल पदावली की कमी भी खटकती थी। बात यह है कि यह खड़ी बोली के परिमार्जन का काल था। इसके अनंतर गुप्त जी ने बंग भाषा की कविताओं का अनुशीलन तथा मधुसूदन दत्त रचित ब्रजांगना, मेघनाद वध आदि का अनुवाद ऊबड़ खाबड़ और अव्यवहित संस्कृत शब्दों की ठोकरें कहीं कहीं विशेषतः छोटे छोटे छंदों के चरणांत में अब भी लगती हैं। भारत भारती और वैतालिक के बीच की रचनाएं इस दूसरी अवस्था के उदाहरण में ली जा सकती हैं। उसके उपरांत छायावाद कही जाने वाली कविताओं का चलन होता है और गुप्त जी का कुछ झुकाव प्रगीत मुक्तकों और अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र की ओर भी हो जाता है। इस झुकाव का आभास साकेत और यशोधरा में भी पाया जाता है। यह तीसरी अवस्था है। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मध में झूमने या झीमने वाले कवि नहीं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। इनकी रचना के कई प्रकार के नमूने नीचे दिए जाते हैं। क्षत्रिय सुनो अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं पार है क्या क्लेश का। भारत भारती। थे हो और रहोगे जब तुम, थी हूँ और सदैव रहूंगी, कल निर्मल जल की धारा सी आज यहाँ कल वहाँ बहूंगी। दूती बैठी हूँ सचकर मैं, ले चल शीघ्र मिलूं प्रियतम से, धाम धरा धन सब तचकर मैं। अच्छी आँख मिचौनी खेली, बार बार तुम छिपो और मैं खोजूं तुम्हें अकेली। निकल रही है उर से आह, ताक रहे सब मेरी राह, चातक खड़ा चोंच खोले है संपुट खोले सीप खड़ी, मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ अपनी अपनी हमें पड़ी। पृष्ठ संख्या 325। पहले आंखों में थे मानस में कूद मग्न प्रिय, अब थे छीटे वही उड़े थे बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। सखी नील नभस्तर से उतरा यह हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता, अपने हिम बिंदु बचे तब भी चलता उनको धरता धरता, गड़ जाए न कंटक भूतल के कर डाल रहा डरता डरता, आकाश जाल सब ओर तना रवि तंतु आए है आज बना, करता है पद प्रहार वही मक्खी सी भिन्ना रही मही। घटना हो चाहे घटा उठ नीचे से नित्य आती है ऊपर सखी छाकर चंद्रादित्य। इंद्रवधु आने लगी क्यों निज स्वर्ग बिहाय नन्ही दूबो का हृदय निकल पड़ा यह हाय। इस उत्पल से काय में हाय उपल से प्राण रहने दे बक ध्यान यह पावे ये दृग त्राण। वेदने तू भी भली बनी पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। अरि वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी अपने को प्रिय को जगती को देखूं खिची तनी। हा मेरे कुंजों का कूजन रोकर निराश होकर सोया वह चंद्रोजय उसको उड़ा रहा है धवल वसन साधोया। सखी निरख नदी की धारा ढलमल ढलमल चंचल अंचल झलमल झलमल तारा निर्मल जल अंतस्थल भर के उछल उछल कर छल छल करके थल थल तर के कल कल धर के बिखराती है पारा। ओ मेरे मानस के हास खिल सहस्त्र दल सरस सुवास सजनी रोता है मेरा गान प्रिय तक नहीं पहुंच पाती है उसकी कोई तान। बस इसी प्रिय कानन कुंज में मिलन भाषण के स्मृति पुंज में अभय छोड़ मुझे तुम दीजियो हसन रोदन से न पसीजियो। साकेत।